वेद शिवांशा के लिए साड़ी लेकर आया था ताकि वो नव्यांशी की सगाई के दिन पहन सके। हालांकि नव्यांशी ने शिवांशा के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर ली थी, फिर भी जब उसने देखा कि वेद शिवांशा के लिए खास कुछ लेकर आया है तो सब यही चाहते थे कि शिवांशा वेद की लाई हुई साड़ी पहने। वेद ऊपर कमरे में आ गया था, वहीं शिवांशा भी उसके पीछे पीछे चली आई थी। वेद को देखते ही शिवांशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपने बर्ताव पर अफसोस हो रहा था कि उसने बेवजह वेद को परेशान कर दिया था। वेद ने पहले हैरानी भरी नगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। शिवांशा के साथ रहते हुए उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो खुश हो या दुखी, उसे रोना ही होता था। वेद ने गहरी सांस ली और अपनी बाहें फैलाकर शिवांशा को अपने पास आने का इशारा किया। शिवांशा जल्दी से उसके पास गई और उसके सीने से लग गई थी। वो बच्चों की तरह उसकी बाहों में दुबकी हुई सिसक रही थी। तुम चाहो तो सॉरी कह सकती हो, वेद ने उसके कान के पास बेहद धीमी आवाज में कहा। आप इतने अच्छे क्यों हो, शिवांशा जवाब में बोली। कुछ देर पहले तो तुम मुझे बुरा कह रही थी। तुम जैसी शरारती बच्चों को संभालना मुझे अच्छे से आता है, जो छोटी बातों पर जिद करते हैं और उतनी ही जल्दी वापस मान भी जाते हैं, वेद ने आंखें घुमाकर कहा। शिवांशा अभी भी वेद के गले लगी हुई थी। उसके लिए वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान था। उसने सुबकते हुए कहा, तो आप मुझे मनाने के लिए साड़ी लेकर आए हो? बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे लिए पसंद कर ली थी, बस आज तैयार होकर आई थी तो लेने चला गया, वेद ने जवाब दिया। वो धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। जब शिवांशा को थोड़ा बेहतर लगने लगा तो वो वेद से अलग हुई और उसकी गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बोली, वैसे मुझे नवीदी की सिलेक्ट की हुई ड्रेस भी अच्छी लगी थी। हाँ तो तुम्हें रखने से कौन मना कर रहा है, जो चाहे वो खरीदो, लेकिन पहनना वही है जो मैंने सिलेक्ट किया है। वैसे भी तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हें साड़ी में देखना ज्यादा अच्छा लगता है, वेद ने सिर हिलाकर कहा। उसकी बात सुनकर शिवांशा ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। उसे अच्छे से याद था नीचे वेद ने नव्यांशी से यही कहा था कि वो बस ऐसे ही सिंपल साड़ी लेकर आया है, शिवांशा चाहे तो नव्यांशी की सिलेक्ट की हुई ड्रेस पहन सकती है। लेकिन नीचे आपने कुछ और कहा था, शिवांशा ने जल्दी से कहा, क्योंकि मुझे पता था कि नव्यांशी खुद यही कहेगी कि तुम्हें वही पहनना चाहिए जो मैं लेकर आया हूँ। वैसे वो ड्रेस भी अच्छी थी, क्या तुम मुझे ट्राई करके दिखाना चाहोगी, वेद ने सोचते हुए अंदाज में कहा। आज पहली बार उसने शिवांशा के सामने अपनी कोई डिमांड रखी थी। शिवांशा ने उसकी तरफ शरारती निगाहों से देखा और तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा, ऐसे कैसे मैं वो लहंगा पहन सकती हूँ जब मेरे पति को मुझे साड़ी में देखना पसंद है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इतना कहकर वो वेद से दूर हो गई थी और नीचे जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर शिवांशा ने वेद की तरफ पलटकर कहा, थैंक यू नहीं कहूंगी, क्योंकि किस किस बात के लिए थैंक यू बोलूंगी, आई लव यू टू। उसे परेशान करने के बाद शिवांशा वहां से चली गई थी। पहले वेद उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, फिर वो हल्के से हंस पड़ा था। उसे समझ आ गया था कि धीरे धीरे सच में वो थोड़ी मैच्योर हो रही थी और उसे अच्छे से समझ आ गया था कि उसे वेद को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ अरमान और मनन राजावत हाउस पहुंच चुके थे। अरमान का वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। सगाई के लिए रिश्तेदार और बाकी लोग घर आना शुरू हो गए थे, इसलिए राजावत हाउस को हल्का फुल्का डेकोरेट किया गया था। अरमान और मनन के वहां पहुंचते ही उन दोनों का लगेज कमरे में रखवा दिया गया था। आते ही उसे सबसे पहले तेजिंदर और देवेश से मिलना था। मनन को कमरे में छोड़कर अरमान उनके पास तेजिंदर के कमरे में पहुंचा। उन दोनों के अलावा लीला भी वहीं पर मौजूद थी। वहां जाते ही अरमान ने उन सबके पैर छुए। उसके चेहरे के भाव सख्त थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसे उनसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई थी। पहली बार तुमने इस खानदान का बेटा होने का फर्ज निभाया है, तेजिंदर ने मुस्कुराकर कहा। हम यहाँ सोच रहे थे कि वेद सिंह चौहान को कंट्रोल करने के लिए ऐसा क्या करें, और तुमने हमसे पहले ही अपने कदम तक आगे बढ़ा दिए। मानना पड़ेगा अरमान, अंकुश सही कहता था, तुम इंटेलिजेंट तो हो। अरमान को पहले से ही उनके इरादों की भनक थी, ऊपर से उनकी बातों ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। अरमान बिल्कुल चुप था, बस वो उनकी बातें सुन रहा था ताकि उनके इरादों को खुलकर जान सके। वो लड़की बहुत तेज है और उसने मेरा बहुत बार अपमान किया है, एक बार इस घर में बहू बनकर आने दो, फिर दोनों भाई बहन को मैं उनकी औकात दिखाऊंगी, लीला ने दांत पीसते हुए कहा। अरे अच्छे से मौका मिलेगा, चिंता मत करो, एक बार सगाई हो जाए फिर शादी की बात भी कर लेंगे, मैं तो कहता हूँ इसी महीने रख लेते हैं, तेजिंदर बोला। अरमान की मुठ्ठियां कसकर बंधी हुई थी, वो किस तरह अपने गुस्से को काबू कर पा रहा था ये वही जानता था। देवेश भी उसकी तरह बिल्कुल चुप था और अरमान के चेहरे की तरफ देख रहा था। अगर वेद ने उसे इस बात का आश्वासन नहीं दिया होता कि उन दोनों के रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी वेद की है, तो वो कभी नव्यांशी से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहता। अब भी अगर अरमान चुप था तो सिर्फ वेद की वजह से। मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, अरमान ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा। हाँ हाँ, एक लंबे सफर के बाद आए हो। ऊपर से आगे तुम्हें इस परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, तेजिंदर ने जवाब दिया। अरमान तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया था। उन तीनों के बीच उसे घुटन महसूस हो रही थी। वहीं अरमान के कमरे से बाहर निकलते ही देवेश ने तेजिंदर की तरफ देखा। वो चिंतित स्वर में बोला, आपको अभी उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे डर है कि वो मना ना कर दे। ये सब बातें मैंने उसका इरादा जानने के लिए ही की थी। अरमान डर कर बैठने वाले लोगों में से नहीं है। अगर उसके मन में कुछ होता तो वो अभी बोल देता। अंकुश लंबे समय से जेल में है और इसका कारण वेद और वो लड़की है। कभी ना कभी तो खून खौल ही उठता है और आखिर वो इसी परिवार का बच्चा है, तेजिंदर ने समझाया। आज से पहले अरमान को उनकी कोई भी बात गलत लगती तो वो उसी वक्त बोल जाता था। फिलहाल अरमान चुप था तो वे उसकी खामोशी का गलत मतलब निकाल रहे थे। हर बार खामोशी का मतलब हाँ ही नहीं होता है भाई साहब, देवेश बोला। कई बार खामोशी अपने अंदर एक बड़ा सा तूफान छुपा कर रखती है, जो मुझे अरमान की आंखों में नजर आ रहा था। उसे पहले से ही इस परिवार की राजनीति नहीं पसंद है। मुझे डर है कि वो कहीं हमारे खिलाफ ही न चला जाए। अगर उसने ऐसा किया तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अगर उसके दिमाग में किसी तरह का तूफान चल भी रहा है तो उसे शांत करने का काम तुम्हारा है, वरना हमारा गुस्सा तो तुम जानते ही हो, तेजिंदर ने सख्त आवाज में कहा और उठकर चला गया था। देवेश हर बार की तरह बीच में फंस गया था। तेजिंदर की बात मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो जानता था कि अरमान उसकी कभी नहीं सुनेगा। उसे बस इसी बात का डर था कि तेजिंदर और लीला की साजिशों का नतीजा उसके बेटों को न चुकाना पड़े। वहीं अरमान कमरे में वापस आ गया था और अंदर आते ही उसने सीधा वेद को कॉल किया। वो शांत लेकिन परेशान स्वर में बोला, आपके कहने पर मैं बिल्कुल चुप हूँ, पर सच में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अच्छे से जानते हैं उनके इरादे क्या हैं, फिर क्यों नव्यांशी की तरह जिद पर अड़े हुए हैं। आपकी बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढिए मिस्टर चौहान, मैं किसी तरह से उसके लायक नहीं हूँ। आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में?
अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि जब वेद आसानी से राजावत फैमिली की साजिशों का जवाब दे सकता था तो फिर वो शांत क्यों था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ नव्यांशी इसका कारण थी या वो शिवांशा की वजह से डर गया था। फिलहाल तो नव्यांशी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। उन्हें जो करना है करने दो, अपनी सगाई पर ध्यान दो, बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ, वेद ने उसे समझाया और फिर कॉल कट कर दिया था। अरमान वेद के बर्ताव से हैरान था। खुद वंश तक को समझ नहीं आया था कि वेद ने राजावत फैमिली की उस घटिया हरकत का कोई जवाब क्यों नहीं दिया था, लेकिन वेद के दिमाग को समझ पाना उनके बस की बात नहीं थी। वो इस वक्त अपने मम्मी पापा की फ़ोटो के सामने खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सर्द थीं। राजावत फैमिली को लगता है कि नव्यांशी से शादी करके उन्हें इस घर में घुसने का मौका मिला है, लेकिन मौका तो मुझे भी उनके करीब जाने का मिला है। अगर उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं तो लगने देने में क्या बुराई है। बेफिक्र इंसान हमेशा गलतियाँ करता है और यही गलती उसे मौत के मुँह तक ले जाती है। तेजिंदर राजावत भी गलती करेगा। आपके मरने के बाद उसे लगा कि उसकी कंपनी में हमारी जो भी हिस्सेदारी है उसे धोखाधड़ी से वो खुद हथिया लेगा और मुझसे बच पाएगा, तो ये उसका सबसे बड़ा वहम था। देवराज ठाकुर के बच्चों को उसने पनाह दे रखी थी तो मतलब साफ है, गुनाहों का हिस्सेदार तो वो भी है और कोई और भी जो सगाई में जरूर आएगा। आखिर तेजिंदर को अपनी जीत जो साबित करनी होगी, वेद ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। तेजिंदर और लीला को ये लग रहा था कि वे नव्यांशी के जरिए वेद को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये खेल तो हमेशा से वेद के हाथ में था। सिर्फ उन्हें ही चौहान पैलेस तक नहीं पहुंचना था, वेद को भी उनके करीब जाना था ताकि अपनी मम्मी पापा की मौत के पीछे छुपे बाकी के गुनहगारों को सामने ला सके। शिवांशा मासूम थी, रोहन ने भी काफी कुछ खेला था, वेद ने उन्हें माफ करके दिल से अपनाया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो भूल गया था कि किस तरह से उसके माता पिता को उसकी ही आंखों के सामने मार दिया गया था। और सिर्फ उन्हें ही नहीं मारा गया था, मारने की कोशिश तो उस दिन उसे भी की गई थी, बस किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। फिलहाल वेद बिल्कुल शांत था। राजावत फैमिली को यही लग रहा था कि वो नव्यांशी की खुशियों के आगे एक अच्छे भाई की तरह सब कुछ सहन कर रहा है, लेकिन सब कुछ वेद की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। बस उसे इंतजार था तो इस सगाई का। हाँ, तो आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि वेद शांत क्यों है, या फिर उसको मारने की कोशिश की गई तो उसने कुछ किया क्यों नहीं। कई बार जीतने के लिए हार का दिखावा करना पड़ता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।